दानियल की पुस्तक संख्या 106
न्याय का अनावरण
नौगेरा से रविवार के कानून तक एक भविष्य सूचक विश्लेषण।
जीवितों के जांच पड़ताल के न्याय की शुरुआत 11 सितंबर 2001 को हुई और निष्पादनात्मक न्याय की शुरुआत शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय होगी। न्याय के ये दोनों काल उस दूत के कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वाचा के तीसरे दूत और तीसरे एलिया के लिए मार्ग तैयार करता है। तीसरा एलिया मिलेराइट इतिहास में आरंभ हुए एलिया संदेशवाहक का समापन है। वाचा के दूत की पूर्ति में मसीह ने दो बार वास्तविक भौतिक मंदिर को शुद्ध किया, जो उसके शरीर और उसके आध्यात्मिक मंदिर का प्रतीक था। उसका वास्तविक भौतिक मंदिर पहले मरुभूमि का तंबू मंदिर था, फिर सुलेमान का मंदिर, फिर वो मंदिर जो बाबुल में 70 वर्षों की बंधुआई के बाद पुनर्निर्मित हुआ, और फिर वही मंदिर जिसका हेरोद ने 46 वर्षों तक नवीनीकरण कराया। परमेश्वर की शारीरिक उपस्थिति ने मंडप और सुलेमान के मंदिर को आशीष दी, परंतु निर्वासन के बाद जो मंदिर फिर से बनाया गया उसे नहीं, पर वो पुनर्निर्मित मंदिर मसीह की शारीरिक उपस्थिति से आशीषित हुआ। हेरोदेस के पुनर्निर्मित मंदिर के इतिहास में मसीह ने मलाकी अध्याय 3 की पूर्ति में मंदिर को दो बार शुद्ध किया। पहली बार शुद्ध करते समय मसीह ने मंदिर को अपने पिता का घर बताया, पर अंतिम बार शुद्ध करते समय मसीह ने इसे यहूदियों का घर कहा। मिलरवादियों के इतिहास में मसीह ने 1798 से 1844 तक 46 वर्षों में एक आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण किया। 22 अक्टूबर 1844 को मलाकी अध्याय 3 की पूर्ति में वह अचानक अपने मंदिर में आ गए और इस प्रकार उन्होंने मूर्ख कुमारियों को शुद्ध किया। तब वो तीसरे स्वर्गदूत के रूप में आए ताकि दूसरे और अंतिम शुद्धिकरण को पूरा करें, परंतु जैसे प्राचीन इसराइल के प्रारंभ में था वैसे ही आधुनिक इसराइल में कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक विश्वास का अभाव था। 11 सितंबर 2001 को मसीह लौट आए ताकि मंदिर की दूसरी शुद्धि पूरी करें, जिसकी पूर्ति तब होती है जब शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय मूर्ख कुवारियां छांट दी जाती हैं, जब वे इस वास्तविकता के प्रति जागरूक होती हैं कि वे उस ज्ञान में वृद्धि को नहीं समझती जो 1989 में खोली गई थी। वो ज्ञान में वृद्धि अंतिम वर्षा के संदेश का प्रतिनिधित्व करती है, जो 10 कुवारियों के दृष्टांत के संदर्भ में देखने पर आधी रात की पुकार का संदेश है। दानियल 11 के अंतिम 6 पदों का संदेश, जो 1989 में अंत के समय पर खोला गया था, उन्हीं में पद 44 में पूरब से और उत्तर से समाचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंतिम वर्षा का संदेश आधी रात की पुकार का संदेश है, और वही पूर्व और उत्तर का संदेश भी है। पूर्व और उत्तर क्रमशः इस्लाम और पापत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और संदेश के रूप में वे उस संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे 11 सितंबर 2001 और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के बीच लाओदीकियाई एडवेंटवाद द्वारा नकली रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 11 सितंबर 2001 इस्लाम पूर्व का प्रतिनिधित्व करता है, और रविवार का कानून पशु के चिन्ह उत्तर का प्रतिनिधित्व करता है। लाओदीकियाई एडवेंटिज्म की मरण शैया उन दो मार्ग चिन्हों के बीच निरूपित है, जैसा कि अवज्ञाकारी भविष्यवक्ता की गधे और सिंह के बीच हुई मृत्यु द्वारा प्रतीकित है। जे लोग पशु का चिन्ह स्वीकार करते हैं उनकी मरण शैया पूर्व और उत्तर से समाचार द्वारा निरूपित है, जो पापाई शक्ति को क्रोधित करता है और परमेश्वर के लोगों पर अंतिम उत्पीड़न की शुरुआत करता है। वो संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय आरंभ होता है। वही स्थान और वही समय है जब तीसरे हाय का इस्लाम अचानक प्रहार करता है। वो अप्रत्याशित आक्रमण राष्ट्रीय पतन लाता है और राष्ट्रों को क्रोधित करता है। इस प्रकार अजगर, पशु और झूठे भविष्यवक्ता के त्रिवित गठबंधन के अधीन इस्लाम के विरुद्ध सभी राष्ट्रों को एकत्र करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक प्रेरक शक्ति प्रदान करता है। तीसरे एलिया द्वारा दर्शाए गए इतिहास में तीसरे हाय की पहचान कराने वाला संदेश अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता को यह बताता है कि इस्लाम न्याय का वो साधन है जिसका उपयोग परमेश्वर पोपाय अधिकार के चिन्ह की उपासना के कारण मनुष्यों को दंडित करने के लिए करते हैं, जैसा कि 3 रोम 3 बाबुल 3 एलिया और मार्ग तैयार करने वाले 3 दूतों के मामले में भी है। तीसरा हाय तीनों हायों के तेहरे अनुप्रयोग से स्थापित होता है।
और मैंने देखा और एक स्वर्गदूत को आकाश के मध्य से उड़ते हुए सुना, जो बड़े शब्द से कह रहा था, हाय 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 पृथ्वी के रहने वालों पर उन 3 स्वर्गदूतों के तुरहियों की अन्य ध्वनियों के कारण जिन्हें अब तक फूंकना शेष है। प्रकाशित वाक्य 8:13।
सिस्टर व्हाइट ने स्मिथ की पुस्तक डैनियल एंड रेवलेशन का जोरदार समर्थन किया। ये बताते हुए कि प्रत्येक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के पास ये पुस्तक होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने शी वाज विथ द प्रोटेक्शनिस्ट टू से नॉन एट द अलार्म्स इज बेसर आई देयर, लेकिन ये तथ्य इनके समर्थन में मौजूद है।
प्रभु कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं कि वे साहित्य प्रसार के क्षेत्र में प्रवेश करें, ताकि वर्तमान सत्य के प्रकाश वाली पुस्तकें प्रसारित हो सकें। संसार के लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि समय के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। उनके पास वे पुस्तकें पहुंचाओ जो उन्हें प्रकाश देंगी। दानियेल और प्रकाशित वाक्य, महान संघर्ष, पितृपुरुष और नबी, और युगों की अभिलाषा अब संसार तक पहुंचनी चाहिए। दानियेल और प्रकाशित वाक्य में निहित महान शिक्षाओं को ऑस्ट्रेलिया में बहुतों ने उत्सुकता से पढ़ा है। इस पुस्तक के माध्यम से अनेक बहुमूल्य आत्माएं सत्य के ज्ञान तक लाई गई हैं। दानियेल और प्रकाशित वाक्य पर विचार का प्रसार करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। मैं किसी अन्य पुस्तक को नहीं जानता जो इसकी जगह ले सके। ये परमेश्वर का सहायक हाथ है। जो लंबे समय से सत्य में हैं, वे सो गए हैं। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कृत होने की आवश्यकता है। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश ऊंचे स्वर से घोषित किया जाना है। गंभीर मुद्दे हमारे सामने हैं। हमारे पास समय नहीं है गंवाने के लिए। ईश्वर न करे कि हम छोटी छोटी बातों को उस प्रकाश पर छा जाने दें जो संसार को दिया जाना चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस, खंड 31:42।
वह पुस्तक जिसे द नियल की पुस्तक में द डेली के बारे में मिलर राइट दृष्टिकोण को अस्वीकार करने वालों ने भी अस्वीकार किया, को परमेश्वर का सहायक हाथ कहा गया था। यदि परमेश्वर की प्रजा को पूर्व उद्धरण में उल्लिखित पुस्तकों का प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रजा के पास स्वयं उस पुस्तक का स्वामित्व होना आवश्यक होगा। दानियेल की पुस्तक में द डेली के नए दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वालों के हमले का मुख्य लक्ष्य वही पुस्तक थी, क्योंकि वे उसी पुस्तक का पुनर्लेखन करना चाहते थे और द डेली के सही दृष्टिकोण को हटाना चाहते थे। जब सिस्टर व्हाइट दानियेल की पुस्तक में द डेली के संबंध में हुए विद्रोह के 2 प्रमुख नेताओं का उल्लेख करती थीं, तो वह अक्सर ये इंगित करती थीं कि उनमें प्रिस्कॉट और डैनियल्स कारण से परिणाम तक तर्क करने की क्षमता नहीं थी। लाओदिकियाई एडवेंटिस्टों के इतिहास संशोधकों में भी यही समस्या दिखाई देती है। 1885 से आगे के विद्रोह के इतिहास में अग्रणी पुरुषों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के किसी न किसी चरण में द डेली की झूठी शिक्षा को स्वीकार किया था। उनका विद्रोह परिणाम था और द डेली की गलत समझ कारण थी। लाओदिकियाई एडवेंटिस्ट संशोधनवादी अशिक्षितों को ये विश्वास दिलाते हैं कि एडवेंट इतिहास के वही ऐतिहासिक विद्रोही वास्तव में विद्रोह में नहीं थे, जबकि उनकी संशोधित गवाही को बाइबल और भविष्यद्वाणी की आत्मा की गवाही कभी समर्थन नहीं देती। क्योंकि वे परिणाम को विद्रोह नहीं मानते, इसलिए वे कारण को खोजने की संभावना को ही बंद कर देते हैं।
जैसे पक्षी भटकता है और जैसे अबाबील उड़ती है, वैसे ही अकारण शाप नहीं आता। नीति वचन 22:6।
परमेश्वर की प्रजा को विद्रोह को पहचानना चाहिए और जब वे ऐसा करें तो उन्हें उसके कारण की तलाश करनी चाहिए, फिर उन्हें उस कारण का निवारण करना चाहिए। निम्नलिखित अंश में सिस्टर व्हाइट आखान की कथा पर टिप्पणी कर रही हैं।
मुझे दिखाया गया है कि कर्मेश्वर यहाँ ये दिखाते हैं कि वे उन लोगों के बीच पाप को कैसे देखते हैं जो ये दावा करते हैं कि वे उनकी आज्ञा पालक प्रजा हैं, जिनको उन्होंने अपनी सामर्थ के अद्भुत प्रगटीकरणों के दर्शन का विशेष सम्मान दिया है, जैसे प्राचीन इसराइल को, और जो तब भी उनकी स्पष्ट आज्ञाओं की अवहेलना करने का साहस करते हैं वे उनके क्रोध के अधीन होंगे। वो अपनी प्रजा को सिखाना चाहते हैं कि अवज्ञा और पाप उनके लिए अत्यंत आपत्तिजनक हैं और उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वो हमें दिखाते हैं कि जब उनकी प्रजा पाप में पाई जाए तो उन्हें तुरंत ठोस कदम उठाकर उस पाप को अपनी बीच से दूर करना चाहिए, ताकि उनकी अप्रसन्नता उन सब पर न ठहर जाए। पर यदि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग प्रजा के पापों को अनदेखा कर दें तो उनकी अप्रसन्नता उन पर होगी और परमेश्वर की प्रजा समग्र रूप में उन पापों के लिए उत्तरदायी ठहराई जाएगी। अतीत में अपनी प्रजा के साथ अपने व्यवहार में प्रभु ये दर्शाते हैं कि कलीसिया को बुराइयों से शुद्ध करना आवश्यक है। एक पापी ऐसा अंधकार फैला सकता है जो समूची मंडली से परमेश्वर के प्रकाश को दूर कर दे। जब लोग ये समझें कि उन पर अंधकार छा रहा है और उन्हें कारण ज्ञात नहीं है, तब उन्हें अत्यंत दीनता और आत्मनिम्नता के साथ गंभीरता से परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जब तक कि वे कुकर्म जो उनकी आत्मा को दुखी करते हैं खोजकर दूर न कर दिए जाएं।
हमारे विरुद्ध जो पक्षपात इसलिए उत्पन्न हुआ है कि हमने उन बुराइयों को ताड़ना दी है जिनका अस्तित्व परमेश्वर ने मुझे दिखाया था और जो कठोरता और कड़ाई का शोर मचाया गया है, ये अन्यायपूर्ण है। परमेश्वर हमें बोलने की आज्ञा देता है और हम मौन नहीं रहेंगे। यदि उसके लोगों के बीच बुराइयां स्पष्ट हों और यदि परमेश्वर के सेवक उनसे उदासीन होकर आगे बढ़ जाएं, तो वे वस्तुतः पापी का समर्थन करते हैं और उसे उचित ठहराते हैं और समान रूप से दोषी होते हैं तथा उतनी ही निश्चितता से परमेश्वर की अप्रसन्नता पाएंगे, क्योंकि दोषियों के पापों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा। दर्शन में मुझे अनेक उदाहरणों की ओर इंगित किया गया है जहां उनके बीच विद्यमान बुराइयों और पापों से निपटने में उसके सेवकों की उपेक्षा के कारण परमेश्वर की अप्रसन्नता उन पर आई, जिन्होंने इन बुराइयों को दरगुजर किया उन्हें लोगों ने अत्यंत सौम्य और मनोहर स्वभाव वाले समझा, केवल इसलिए कि उन्होंने एक स्पष्ट शास्त्रीय कर्तव्य का निर्वाह करने से कतराया। ये काम उन्हें रुचिकर नहीं था, इसलिए वे उससे बचते रहे। टेस्टिमोनीज खंड 3:585।
एडवेंटवादी आंदोलन के भीतर विद्रोह करने वाले नेताओं के इतिहास इस तथ्य की गवाही देते हैं कि उनके विद्रोह में लगभग हमेशा दिखाई देने वाले चरणों में से एक ये रहा है कि अपने व्यक्तिगत अनुभव के किसी न किसी बिंदु पर उन्होंने नित्य के बारे में गलत दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद स्मिथ की पुस्तक यद्यपि दैवीय प्रेरित नहीं है और उसमें कुछ सिद्धांतगत समस्याएं हैं, फिर भी प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 और 9 पर अग्रदूतों की समझ का एक उत्कृष्ट अवलोकन प्रस्तुत करती है, जहां हम पहली 6 तुरहियों का भविष्यवाणी संबंधी इतिहास प्रतिपादित देखते हैं। 3 हायों के त्रिप्रयोग पर विचार आरंभ करते हुए हम स्मिथ की पुस्तक डैनियल एंड रेवलेशन में दी गई उनकी टीका का संदर्भ लेंगे। बहन व्हाइट हमें बताती हैं कि विलियम मिलर को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर महान प्रकाश दिया गया था, परंतु अध्याय 13 तथा 16 से 18 तक के बारे में उनकी समझ गलत थी, क्योंकि वे इतिहास के ऐसे दृष्टिकोण पर थे जहां ये देखना संभव नहीं था कि उजाड़ करने वाली शक्तियां 2 नहीं बल्कि 3 है। उनका महान प्रकाश प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 से 9 पर था।
उपदेशकों और जनसामान्य ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को रहस्यमय और पवित्र शास्त्रों के अन्य भागों की तुलना में कम महत्व का माना है, परंतु मैंने देखा कि ये पुस्तक वास्तव में एक ईश्वरीय प्रकाशन है जो उन लोगों के विशेष लाभ के लिए दिया गया है जो अंतिम दिनों में जीवित होंगे, ताकि उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति और अपने कर्तव्य का निर्धारण करने में मार्गदर्शन मिले। परमेश्वर ने विलियम मिलर के मन को भविष्यवाणियों की ओर उन्मुख किया और उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के निरेश में महान प्रकाश दिया। अर्ली राइटिंग्स 2:35।
मिलर ने कलीसियाओं, मुहरों, तुरहियों और कटोरों के बारे में अपनी समझ इस प्रकार प्रस्तुत की।
एशिया की 7 कलीसियाएं मसीह की कलीसिया का इतिहास है, उसके 7 रूपों में, उसके सभी उतार चढ़ावों में, उसकी समृद्धि और विपत्तियों के सारे दौर में, प्रेरितों के दिनों से लेकर जगत के अंत तक। 7 मोहरे पृथ्वी के सत्ताधारियों और राजाओं द्वारा कलीसिया के संबंध में की गई कार्यवाहियों का इतिहास है और उसी समय अपने लोगों की परमेश्वर द्वारा की गई रक्षा का भी। 7 तुरहिया पृथ्वी पर या रोमी राज्य पर भेजे गए 7 विशिष्ट और भारी दंडों का इतिहास है और 7 कटोरे पापल रोम पर भेजी गई सात अंतिम विपत्तियां हैं। इनके साथ अनेक अन्य घटनाएं भी मिली हुई हैं जो सहायक धाराओं की तरह इनमें बुनी गई हैं और भविष्यवाणी की उस महान नदी को भरती जाती है जब तक कि सब मिलकर हमें अनंतता के महासागर तक न पहुंचा दें। यह मेरे विचार में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जॉन की भविष्यवाणी की रूपरेखा है और जो व्यक्ति इस पुस्तक को समझना चाहता है उसे परमेश्वर के वचन के अन्य भागों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस भविष्यवाणी में प्रयुक्त प्रतीक और रूपक सब के सब उसी में नहीं समझाए गए हैं बल्कि उन्हें अन्य भविष्यद् वक्ताओं के लेखों में ढूंढना होगा और पवित्र शास्त्र के अन्य अंशों में उनकी व्याख्या मिलती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी भाग का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी परमेश्वर ने ऐसा ठहराया कि संपूर्ण का अध्ययन किया जाए। विलियम मिलर, मिलर के व्याख्यान, खंड 2, व्याख्यान 12, हसात 58।
जिस प्रकार वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाला तीसरा दूत कलीसिया के न्याय के आंतरिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और इसके विपरीत तीसरा एलिया आधुनिक बाबुल के न्याय में बाहरी इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार कलीसियाओं और मुहरों के संबंध में अग्रदूतों की समझ ने उसी आंतरिक बाहरी गवाही की पहचान की।
इन मुहरों का परिचय हमारे सामने प्रकाशित वाक्य के चौथे, पांचवे और छठे अध्यायों में कराया गया है। इन मुहरों के अंतर्गत प्रस्तुत दृश्य प्रकाशित वाक्य 6 और प्रकाशित वाक्य 8 के प्रथम पद में दिखाए गए हैं। वे स्पष्टतः उन घटनाओं को समाहित करते हैं जिनसे कलीसिया इस युग के प्रारंभ से लेकर मसीह के आगमन तक जुड़ी रहती है। जबकि सात कलीसियाएं कलीसिया के आंतरिक इतिहास को प्रस्तुत करती हैं, सात मुहरें इसके बाह्य इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकट करती हैं। यिराया स्मिथ, द बिब्लिकल इंस्टीट्यूट, 253।
उरिया स्मिथ कलीसियाओं के आंतरिक और बाह्य संबंधों की मिलराइट समझ का प्रतिपादन कर रहे थे और जेम्स व्हाइट समांतर इतिहासों के संदर्भ में समान अवलोकन प्रस्तुत करते हैं।
हमने अब कलीसियाओं, मुहरों और पशुओं अर्थात जीवित प्राणियों का उस सीमा तक पता लगाया है जहां तक वे एक ही समय अवधियों को आवृत करने के संदर्भ में एक दूसरे से मेल खाते हैं। मुहरे संख्या में 7 है और पशु केवल 4, और यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मुहरे खोले जाने पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पशु ये कहते हुए सुनाई देते हैं, आओ और देखो। परंतु जब पांचवी, छठी और सातवीं मुहरे खोली जाती हैं तो ऐसा कोई स्वर नहीं सुनाई देता। इसी प्रकार अंतिम तीन कलीसियाएं और अंतिम तीन मुहरे भी एक ही समय अवधियों को आवृत करने के संदर्भ में वैसे परस्पर तुलनीय नहीं हैं जैसे पहली चार कलीसियाएं और पहली चार मुहरे हैं। परंतु जैसा कि हमने दिखाया है, कलीसियाएं, मुहरे और पशु लगभग 1800 वर्षों तक एक ही समय अवधियों को आवृत करने के विषय में परस्पर मेल खाते हैं जब तक कि हम वर्तमान समय से केवल आधी शताब्दी से कुछ अधिक पहले के काल तक नहीं आ पहुँचते। जेम्स व्हाइट, रिव्यू एंड हेरल्ड्स, 12 फरवरी 1857।
हमने अभी अभी मिलराइट इतिहास के प्रमुख अग्रदूतों में से तीन का उल्लेख किया। इन तीनों का द डेली के विषय में सही दृष्टिकोण था और वे सभी कलीसियाओं, मुहरों और तुरहियों के अवलोकन को उस सत्य के ढांचे में स्वीकार करते थे जिसे समझने और प्रस्तुत करने हेतु मिलर को प्रेरित किया गया था।
जब ऐसे लोग आएं जो उस नींव से एक भी खूंटा या स्तंभ हटाना चाहें जिसे परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा द्वारा स्थापित किया है, तो हमारे कार्य के अग्रदूत रहे वृद्ध पुरुषों को खुलकर बोलने दें और जो अब दिवंगत हो चुके हैं वे भी हमारी पत्र पत्रिकाओं में अपने लेखों के पुनर्मुद्रण के द्वारा बोलें। दैवीय ज्योति की उन किरणों को संग्रह करो जो परमेश्वर ने दे रहे जैसे उसने अपने लोगों को सत्य के मार्ग पर कदम दर कदम आगे बढ़ाया है। ये सत्य समय और परीक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरेगा। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीज 7/6/10।
इवन सितंबर 2001 को प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का शक्तिशाली स्वर्गदूत उतरा और उन लोगों का नेतृत्व करने का कार्य शुरू किया जो स्वर्ग से अभी अभी उतरी रोटी को स्वीकार करें और खाएं, उन्हें यिर्मयाह अध्याय 6 के पुराने मार्ग पर वापस ले जाने के लिए। अल्फा और ओमेगा को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो 144,000 में शामिल होने के लिए प्रयास करने को तैयार हों। ताकि वे यह देखें कि एवन अगस्त 1840 को जो उन्हें स्वर्ग से नीचे ले आया था वो केवल समय भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं थी बल्कि दूसरी विपत्ति की समय भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उन्हें अपनी प्रजा की आवश्यकता थी कि वे उस इतिहास के पुराने मार्गों को फिर से खोजें जहां उन्होंने 1798 से 1844 तक के 46 वर्षों में मिलराइट्स का मंदिर खड़ा किया था। वो इतिहास कचरे तो नकली सिक्कों तथा जवाहरात से ढका हुआ था। वो इतिहास एक झूठे बुनियादी संदेश के कारण अस्पष्ट कर दिया गया था जो रेत पर बनाया गया था न कि युगों की चट्टान पर। ये मिलराइट्स के इतिहास में था, वो इतिहास जहां, जैसा कि पत्रस वर्णन करता है, मिलराइट्स जो पहले समय में एक प्रजा न थे परंतु फिर परमेश्वर की प्रजा बने, जिन्हें एक आत्मिक घर, एक पवित्र याजकत्व के रूप में उठाया और बनाया गया था। यहूदा के गोत्र का सिंह 11 सितंबर 2001 को उतरा और अपने अंतिम दिनों की प्रजा का नेतृत्व करते हुए मिलराइट्स मंदिर के उठाए जाने के इतिहास के मंदिर को साफ करने के कार्य में लगाया। उस कार्य का प्रतिरूप एक भविष्यवाणी में दिया गया था जिसने ये बताया था कि प्रभु योशिया नाम के एक पुरुष को उठाएगा जिसका अर्थ है परमेश्वर की नींव। जब अवैज्ञाकारी नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति के अवरूप में योशिया ताया गया तो उसने अव्यवस्था में पड़े मंदिर की मरम्मत का काम शुरू किया। मरम्मत और सफाई के कार्य में मूसा का शाप पाया गया और जब उसे योशिया के सामने पढ़ा गया तो उससे योशिया का सुधार हुआ। हम उस भविष्यवाणी को 11 सितंबर 2001 के बाद सात समय की पुनर्खोज के बारे में संबोधित करेंगे। हम उस अध्ययन की शुरुआत अगले लेख में करेंगे।
जब तक सत्य का अंगीकार करने वाले लोग शैतान की सेवा करते रहेंगे उसकी नरकीय छाया उन्हें परमेश्वर और स्वर्ग का दर्शन करने से वंचित कर देगी। वे उन लोगों के समान होंगे जिन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया है। वे शाश्वत वास्तविकताओं को नहीं देख सकेंगे। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है वो जकरिया अध्याय 3 और 4 तथा 4:10-1 के दर्शाया गया है। और मैंने फिर उत्तर दिया और उससे कहा, ये दो जैतून की डालियां क्या हैं जो दो स्वर्ण नलिकाओं के द्वारा अपने आप से स्वर्ण तेल उंडेलती हैं? और उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, नहीं मेरे प्रभु। तब उसने कहा, ये वे दो अभिषिक्त हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े हैं। प्रभु संसाधनों से परिपूर्ण है, उन्हें किसी भी साधन की कमी नहीं है। हमारे विश्वास की कमी, हमारी सांसारिकता, हमारी खोखली बातें, हमारा अविश्वास जो हमारी बातचीत में प्रकट होता है, इन्हीं के कारण हमारे चारों ओर अंधकारमय छायाएं घिराती हैं। हमारी वाणी और आचरण में मसीह उस सर्वथा मनोहर 10,000 में श्रेष्ठतम के रूप में प्रकट नहीं होते। जब आत्मा निरर्थक दंभ में स्वयं को ऊंचा उठाने पर संतुष्ट हो जाती है तब प्रभु का आत्मा उसके लिए बहुत कम कर पाता है। हमारी निकटदर्शी दृष्टि छाया को तो देखती है पर उसके पार की महिमा को नहीं देख पाती। स्वर्गदूत चारों पवनों को थामे हुए हैं, उन्हें एक क्रोधित घोड़े के रूप में दर्शाया गया है जो बंधन तोड़कर सारी पृथ्वी पर दौड़ जाने को उतावला है, अपनी राह में विनाश और मृत्यु साथ लिए हुए। क्या हम शाश्वत संसार की कगार पर ही सोए रहें? क्या हम सुस्त, ठंडे और मृत बने रहें? ओह, काश हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की आत्मा और श्वास उसके लोगों में फूंकी जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों और जिएं। हमें ये देखना आवश्यक है कि मार्ग संकरा है और द्वार संकीर्ण है, परंतु जब हम उस संकीर्ण द्वार से होकर गुजरते हैं तो उसकी व्यापकता की कोई सीमा नहीं रहती। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेज वॉल्यूम 20, 200 सरदन 200 सबरा।